का था, रूह वही रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं जुनैद की लिखी कहानी माँ। तेज गंध थी साहब, जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो। मुझे लगता है अवश्य कोई कूड़े की गाड़ी रही होगी जिसकी बदबू आप तलक पहुंची हो। नहीं साहब, खुदा कसम मैं मुतमईन हूं, ऐसा कुछ नहीं था। बस जैसे ही मैं 12-18 के माले में गया, वैसे ही बदबू मेरी नाक से टकराई। तभी मैंने पुलिस को फोन किया और फोन लगा सीधे कुंदन नगर कोतवाली में, जिसके इंचार्ज हैं दशरथ सिंह। वो जब अपने दस्ते को लेकर यहां पहुंचे, तभी उन्होंने मुझे भी फोन कर दिया। मैं इस क्षेत्र का पुलिस सर्किल ऑफिसर अविनाश अवस्थी, और इत्तेफाक से मैं भी यहीं रहता हूं, यानी इसी कॉलोनी के 12/18 फ्लैट नंबर 13 में। उनके यहां पहुंचने के पहले ही मैंने तफ्तीश शुरू कर दी और जाना कि अब्दुल गनी लिफ्टमैन ने जो कुछ महसूस किया वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक भीमी गंध थी। इसलिए मैंने 12/18 के हर फ्लैट को नॉक किया और उनसे जानकारी ली। फिर पुलिस पहुंची और उन्होंने हर फ्लैट की तलाशी ली, लेकिन अब्दुल गनी का दावा झूठा निकला। अगले 2 दिन बाद फिर एक तेज बदबू ने अब्दुल गनी का ध्यान खींचा और उसने पुनः इसकी सूचना मुझे दी। इस बार वो सच बोल रहा था। मैंने स्वयं पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे फ्लैट स्वामियों का मजमा सा लग गया, हर कोई डरा सहमा और सशंकित था। तभी हवलदार ने मुझे आवाज दी, साहब यहां आइएगा जल्दी प्लीज। मैं दौड़ कर गया और देखा पोस्ट बकेट में एक मुर्गी का सड़ा हुआ शव पड़ा हुआ था। मामला अब समझ में आया और सबने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे कुछ खटका हुआ कि आखिर ये हरकत की किसने। मैंने पुलिस की मौजूदगी में ही CCTV कैमरों की फुटेज निकाली, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था। मतलब किसी ने बड़ी चालाकी से वो फुटेज कैमरों से उड़ा दी थी। खैर, मामला क्योंकि संगीन और संवेदनशील नहीं था, इसलिए तफ्तीश खत्म हुई और मैंने कोतवाल दशरथ सिंह से भी कह दिया कि मीडिया को इस प्रकरण से दूर ही रखे, वरना बात ही बात में कहानी कोई नया मोड़ ले लेगी। अब सब सामान्य था, लेकिन पता नहीं आते जाते मैं अब क्यों हमेशा उस गंध को सूंघने की कोशिश करता जिसने कॉलोनी में हलचल मचा दी थी। मैंने अब्दुल गनी को सख्त तागिद किया कि अब लापरवाही मत करना, हर आने जाने वाले अजनबी पर पूरी नजर रखना। मैं अविनाश अवस्थी अविवाहित हूं, अपना कहने को सिर्फ मेरी मां ही है जो मेरा सहारा और मेरी जिम्मेदारी है। वो आजकल तीर्थ पर गई हैं, लेकिन मेरा तीर्थ, मेरा स्वर्ग मां ही है। वो मां जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए तबाह कर दी। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तब मैं 8 साल का था। मां और पिताजी ने भागकर विवाह किया था। यह एक अंतरजातीय विवाह था, इसलिए ना कभी हमें ननिहाल ने स्वीकार किया, ना ददिहाल ने कबूल किया। पिता की असामायिक मृत्यु के वक्त मेरी माता की आयु कुछ 30 साल थी। मेरी मां अनपढ़ थी और पिताजी को एक गांव में पुल बनाते समय उनसे प्रेम हो गया था। मां पिताजी से यही कोई 15 साल छोटी थी, लेकिन प्रेम ने कब सीमाओं का अध्ययन किया है। मां को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आना चाहिए था, नहीं तो उस पर वो नहीं गुजरती जो आज तक मैं भूल नहीं पाया। मां पिताजी की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, इस कदर अकेली कि अक्सर मुझे सोता हुआ समझकर खूब सिसकियां भरकर रोती थी। मां ने एक चादर रंगने के रंगरेज कारखाने में नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन एक दिन जब कारखाने में मैं उसको बताने के लिए चेहरे और कदमों में खुशियां भरकर दौड़ा कि मैं कक्षा 8 में प्रथम आया हूं, तो पाया कि वो एक कोने में फटे उधड़े कपड़ों में बिलख रही थी। मैं उस वक्त नहीं समझा, लेकिन फिर जब फिल्में देखने लगा तो याद आया कि उस दिन मेरी मां के साथ रेप हुआ था। लेकिन मां इस रेप के बाद टूट सी गई और उसने जुबान सिर्फ मेरी जिंदगी, तालीम और बेहतरी के लिए सिल ली थी, या फिर यह कहूं अपनी गरीबी के मद्देनजर। उसने कारखाना छोड़ फिर से घर में मिठाई के डिब्बे बनाने शुरू कर दिए। दिन अच्छे गुजर रहे थे तभी एक दिन मैं अपने स्कूल से घर लौटा तो पाया कि कोई व्यक्ति माँ से जबरदस्ती कर रहा था। मुझे देखकर वो लौट गया, लेकिन फिर पता चला कि वो मेरा ताऊ था। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि मेरा तो कोई ताऊ था ही नहीं, बल्कि वो मेरा दादा था। माँ ने कई शहर बदले और मैंने कई सरकारी स्कूल। कक्षा 11 में पढ़ता था तभी बगल में रहने वाली सुजाता आंटी माँ के लिए एक रिश्ता लेकर आई कि वो मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूसरा विवाह कर ले। मैं सिर्फ खामोश था और माँ ने स्पष्ट इनकार कर दिया। लेकिन सुजाता आंटी के समझाने पर कि आदेश एक भला आदमी है, अच्छे रोजगार वाला है, उसकी बीवी भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है, तो माँ ने मुझे और मेरी प्रतिभा को एक मंच मिले इसके लिए दूसरा विवाह कर लिया। आदेश, जिसको मैंने शुरुआत से ही अपना बाप नहीं माना, असल में वो बाप था ही नहीं, वो पाप का पुजारी था। वो मेरी माँ को मेरे सामने ही निर्वस्त्र कर देता और फिर उनके साथ वो खूब शराब पीता था और इस वजह से उसके दोस्त भी घर आते जाते थे। उसके दोस्त मेरी माँ को मेरे सामने ही गंदी नजरों से घूरते और फिक्रे कसते। एक ने तो एक दिन माँ की कमर में चिकोटी भी काट दी और फिर उनकी हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि वो माँ के साथ जबरदस्ती करने लगे। एक रात माँ ने मुझे चुपके से उठाया और हमने रेलवे स्टेशन से एक गाड़ी पकड़ी और दूर, बहुत दूर चले आए। अब माँ एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों की आया बन गई और मैं अपने अध्ययन में जुट गया। लेकिन फिर समय ने चुनौती प्रस्तुत की और एक सड़क दुर्घटना में माँ का एक पैर सदैव के लिए जाता रहा। माँ अब घर में ही रहने लगी और मैंने घर की दहलीज पार की। दिन भर एक मॉल में सेल्समैन की ड्यूटी बजाता और रात को खाना भी पकाता, फिर अपने अध्ययन और किताबों में खोसा जाता। माँ मेरी यह हालत देख सिर्फ रोती थी, लेकिन मैं उनको साहस देता और किसी कोने में जाके मैं भी फूट फूट कर रोता। इसी बीच एक लड़की से मोहब्बत भी हुई, प्रभा नाम था उसका, लेकिन उसको कभी बता नहीं पाया, जबकि मुझे ज्ञात था कि वह भी मुझसे मोहब्बत करती है। जिस दिन मैंने इरादा किया कि उसको जाकर बोल दूं, उसी दिन मैंने प्रभा के मुंह से अपनी शादीशुदा सहेली को कहते हुए सुना कि सास एक सांप होती है, इसलिए उसका फन हमेशा दबा के रखना। रोम खड़े हो गए मेरे और सांस वापस ना लौटी और मैंने अपनी आंख बंद कर अपनी माँ का चेहरा याद किया और नजर आया कि जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी गमों और दर्द में काट दी, मेरा विवाह कहीं उसका जीवन श्राप ना बना दे। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। अपनी मेहनत के दम पर और अपनी माँ की दुआओं के चलते मैंने राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम क्रैक किया और सर्किल ऑफिसर का पद प्राप्त किया। सरकारी आवास छोड़कर लोन लेकर खुद का एक फ्लैट खरीदा ताकि मेरी माँ की आने वाली जिंदगी आराम से कटे। उस रात जब सितारों की तन्हा चादर में अकेले अधूरे चांद को जब बालकनी से निहार कर शराब के पैक की चुस्की खींच रहा था, तभी डोरबेल बजी। दशरथ सिंह, आप यहां? सॉरी सर, हमने सीसीटीवी फुटेज फिर से रिकवर कर ली है। वो मुर्गी के सड़े शव को आपने ही पोस्ट बकेट में रखा था और आपको कैमरे की फुटेज डिलीट करते हुए मिस्टर शर्मा ने देखा था। सब झूठ है, ये बकवास है ये सब। सॉरी सर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। आपने उस दिन जाते हुए मुझे बताया था कि आपकी माता जी तीर्थ यात्रा में गई हैं, जबकि बड़ा दुख है कि उनका एक पांव कटा हुआ है, तो वो अकेले कैसे तीर्थ में जा सकती है? रुको, दिस इज माय ऑर्डर, आई एम योर सीनियर। सर, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है। सारी तलाशी हुई और अंत में डीप फ्रीजर खुला और महकी एक तेज गंदी बदबू। दशरथ सिंह ने रुमाल नाक पर रखकर फ्रीजर के अंदर झांका तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उससे सटा दूसरा फ्रीजर खोला गया। सर, यू आर कोल्ड ब्लड मर्डरर, अरेस्ट हिम। मुझे तत्काल हथकड़ियां लगाई गई और मैं अपने फ्लैट से बाहर निकला। हर तरफ शोर था कि मैं हत्यारा हूं, लेकिन मुझे सुकून था कि मैं अपनी माँ के दूध का कर्ज भले ही ना उतार सका, लेकिन उसके दर्द, उसकी मजबूरियों और उसकी घुटन का कर्ज आज उतार सका हूं। हाँ, मेरी माँ की मौत आज से 3 माह पूर्व ही हो चुकी है, लेकिन वो तब तक नहीं मर सकती थी जब तक वो लोग जिंदा थे जिन्होंने ना महज मेरी माँ का बलात्कार किया बल्कि उस पर गंदी नजरें डाली और जुल्म किए। सब कुछ निपट चुका था। हाँ, मैंने उन सबको यहीं अपने फ्लैट में बुलाकर मौत दी, और वो भी अपनी माँ के शव के सामने बोटी बोटी काट कर अलग कर दी उनके जिस्मों की, और सबको फ्रीज कर दिया ताकि अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते ही इन जानवरों की बोटियां कुत्तों को खिला सकूं। उस दिन अनजाने में फ्रीजर का मुंह खुला रह गया और मैं शराब के नशे में उसे बंद नहीं कर सका, और अब्दुल गनी लिफ्टमैन वो बदबू सूंघकर पुलिस को खबर कर दी, और पुलिस को खुद से दूर रखने के लिए मैंने ये सब किया। खैर, आज भले ही समाज मुझे कातिल, हत्यारा या वहशी कहे, भले ही न्याय की अदालत मुझे सजाए मौत का हुक्म दे, लेकिन मुझे फक्र है कि वो समाज मुझे फिर कपूत तो हरगिज नहीं कहेगा। मानसिक बीमार घोषित कर दिया है कोर्ट ने। एक पागलखाना अब मेरी जेल है। यहां कई पागल सरफिरे और बावले बेवजह हंसते हैं, शोर करते हैं, चीखते हैं, दीवारों पर नाखून गाड़ते हैं, लेकिन मैं खामोश रहता हूं। अपनी मां की तस्वीर मैंने इस पागलखाने की हर दीवार पर उकेर दी है। वो हर पल मेरे साथ है, वो हर पल मेरे पास है। मां, 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 और दर्द की हर हिचकी, हर बिजली के झटके, हर मार, हर जुल्म पर मेरे लबों से आह नहीं, सिर्फ मां निकलता है। मां, जिससे मुकद्दस इस जमीन पर फिर और कोई लफ्ज नहीं, कोई एहसास नहीं। अभी आप सुन रहे थे जुनैद की लिखी कहानी मां। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।